इशिका और अभिमन्यु आशिका को छोड़कर राजवंश विला के लिए निकल गए। उनके इस तरह जाने पर आशिका को अजीब तो लगा, पर उसे अकेले रहने की आदत थी। इशिका और अभिमन्यु के जाने के बाद आशिका ने सबसे पहले रचित को मैसेज किया, क्योंकि उसे उनका प्रोजेक्ट भी करना था। रचित ने कल आशिका को मिलने के लिए AR एम्पायर में बुलाया था। मैसेज पढ़ने के बाद आशिका ने गहरी सांस ली और कहा, काम तो पहले से ही सेट है, पर खुद के लिए एक एडवांस टेक लैब भी तैयार करनी होगी। कल इनसे मिलने के बाद ही डिसाइड करूंगी कि आगे क्या करना है। अभी तो मैं बहुत थक गई हूं और मुझे आराम करना है। आशिका उठी और अपना सामान बालकनी से वापस लिविंग एरिया में लेकर आई। अभिमन्यु ने आशिका को कहा था कि उसने उसके लिए दो कमरे तैयार करवाए हैं। एक रूम काफी होता, फिर भी मुझे मिस्टर राजवंश ने दो कमरे क्यों तैयार करवाए हैं? चलो देखती हूँ कौन सा कंफर्टेबल लगता है, उनमें से एक यूज कर लूंगी, आशिका खुद से बोली और फिर फ्लैट को देखने लगी। वहां पर हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थीं और उसका इंटीरियर भी काफी खूबसूरत था। आशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट उभर आई, क्योंकि आज से पहले वो इतने खूबसूरत घर में नहीं रही थी। डॉक्टर मर्चेंट सच में बहुत लकी हैं जो उन्हें मिस्टर राजवंश मिले। मिस्टर राजवंश जैसे शख्स के बारे में सोचना तो बहुत आगे की बात है। मैं तो ये तक नहीं सोच सकती कि नहीं मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जो मुझसे बिना स्वार्थ के प्यार करेगा। तृप्ति हिल के होते हुए मैं अपनी जिंदगी सुकून से बिता लूं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी, आशिका ने भारी आवाज में कहा। जैसी आशिका की जिंदगी थी, उसने कभी प्यार, शादी या बाकी चीजों के बारे में सोचा तक नहीं था। अचानक से शादी होने का पता चलने के बाद भी उसके दिल में अपने पति के लिए कोई इमोशंस नहीं थे। बस हाँ, वो इस बात को लेकर शुक्रगुजार थी कि उस अनजान शादी की वजह से वो स्काई जैसे इंसान की पत्नी बनने से बच गई थी। आशिका जल्द ही अपने इमोशन से बाहर आई और उसके लिए तैयार किए गए कमरे देखने लगी। इशिका ने उसके लिए जो रूम तैयार करवाए थे उनके बारे में पहले ही बता दिया था। वो पीछे की तरफ बने हुए थे। आशिका एक कमरे में गई तो वहां उसके कम्फर्ट के हिसाब से एक लग्जूरियस बेडरूम तैयार किया गया था। ऐसा लगता है जैसे किसी 5-स्टार होटल में रूम बुक करवाया है, आशिका ने सिर हिलाकर कहा और लगेज रख दिया था। उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, जब उसके लिए इतना अच्छा कमरा तैयार किया गया था तो दूसरे कमरे की क्या जरूरत थी। फिर भी अपना सामान रखने के बाद वो दूसरा कमरा देखने के लिए गई। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला वो हैरान रह गई। मैंने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। अजीब बात है, जिस लड़की ने आज तक अपनी जिंदगी में शादी और प्यार के बारे में नहीं सोचा, वो मिस्टर राजवंश को देखने के बाद इन सब बातों के बारे में सोचने लगी। मिस्टर राजवंश जैसे इंसान लड़कियों का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही हाई करके रखते हैं, जबकि असल जिंदगी में बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं, आशिका ने सिर झटक कर कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बिना कहे ही अभिमन्यु उसकी जरूरत को समझ जाएगा। दूसरा कमरा एक एडवांस टेक लैब में तैयार किया गया था, जहां काफी सारे कंप्यूटर और आशिका की जरूरत का हर एक इक्विपमेंट रखा हुआ था। आशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन ये मेरा पहला और आखिरी प्यार होने वाला है। आई एम हैप्पी फॉर यू डॉक्टर मर्चेंट, लेकिन इस आशिका सिंघानिया की जिंदगी में उसके इस प्यार की जगह कोई नहीं ले पाएगा। आशिका उस कमरे को देखकर बच्चों की तरह खुश हो गई थी। वो काफी थकी हुई थी, फिर भी आराम करने के बजाय अपना काम करने लगी। वहीं दूसरी ओर अभिमान इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। वो चेहरे से परेशान लग रहा था, क्योंकि निशा के साथ डिनर करते हुए उसने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके बाद से अभिमान खोया हुआ था। उसके कानों में अभी भी निशा की आवाज गूंज रही थी, अभिमान मैं तुझे फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। ये बात भी सच है कि तुम लड़के शादी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागना चाहते हो, पर हम औरतें तुम आदमियों से अलग होती हैं। उनके दिल में शादी और अपने पति को लेकर बहुत इमोशंस होते हैं। आशी और तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, किसी ने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया था। अब अगर आशी के घर वाले नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाकर उनसे बात करो, उन्हें मनाओ। बेटा, मैं आशी के दिल की हालत समझ सकती हूँ। जिससे आप प्यार करते हो उससे अलग रहना बहुत मुश्किल होता है। हर वक्त उन्हें खोने का, उनसे अलग होने का डर सताता रहता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी इससे दर्द से गुजरे। अभिमान, अब बहुत हो गया। अगर तुम मिस्टर सिंघानिया से बात नहीं कर सकते तो मैं बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि पुरानी बातों को जाने दे। मैं बस अब अपनी बहू को इस घर में चाहती हूँ।
निशा ने यही सब अभिमान से कहा था। हालांकि अभिमान इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि उसके दिमाग में ये बातें किसने डाली थी, पर हाँ, निशा की बातों ने उसे जरूर परेशानी में डाल दिया था। अभिमान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो आसमान के सितारों को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, काश आपकी तकलीफ मैं ले सकता मॉम। जैसा आप समझ रही हैं वैसा भी नहीं है। वो लड़की आशिका सिंघानिया कभी इस तकलीफ से नहीं गुजर रही है जो आप फील कर रही हैं। आप बेवजह उसके लिए परेशान हो रही हैं। वो तो मुझसे प्यार तक नहीं करती है। अगर मैं राजवंश फैमिली से बिलोंग नहीं करता तो ये शादी का पता चलने के बाद मुझसे पहले वो तलाक लेने की जल्दी करती। रही बात मिस्टर सिंघानिया को जाकर मनाने की, तो जो भी हुआ उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर सकूं। गलती मेरी है जो मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। खुद ही सब करने के चक्कर में उसकी जान खतरे में डाल दी। पहले भले ही अभिमान का चेहरा इमोशनलेस था, लेकिन अचानक उसकी आंखों में दर्द उतर आया था। उसके दिमाग में कुछ फ्लैशबैक चलने लगे थे। उस वक्त अभिमान 8 साल का था और वो किसी के पीछे दौड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और भागने की वजह से वो हाँफ भी रहा था। छोड़ो मेरी फ्रेंड को, उसे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? तुम बहुत बुरी हो, मैं सबको बता दूंगा। तुम पार्टी में आई मिकी माउस नहीं बल्कि ईविल विच हो जो मेरी फ्रेंड को किडनैप करके लेकर जा रही है। अभिमान एक शख्स के पीछे भाग रहा था जिसने मिकी माउस के कपड़े पहने हुए थे और उसकी गोद में आशिका थी। उसके बाद जो भी हुआ अभिमान याद भी नहीं करना चाहता था। उसने जल्दी से सिर झटक कर कहा, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से तुम आज इस दुनिया में नहीं हो। तुमसे शादी करने का मेरा बचपन का सपना अधूरा रह गया। अभिमन्यु को आशिका की याद आने लगी थी और वो इस बारे में सोचना तक नहीं चाहता था। सिर्फ यज्ञ ही नहीं, अभिमन्यु को भी इस बात से चिढ़ थी कि आशी को आशिका का नाम दिया गया था। अभिमान अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसके पास रचित का कॉल आया था। स्क्रीन पर रचित का नाम देखते ही अभिमान ने बोरियत भरे लहजे में कहा, काश ये इंसान मेरा सगा नहीं होता तो मेरी जिंदगी की आधी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाती। अभिमान ने आइज रोल की और कॉल रिसीव किया। वो झुंझलाहट भरे स्वर में बोला, बोलो अब कौन सी मनहूस खबर सुनाने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है? तुम हर वक्त इतना चिढ़े हुए क्यों रहते हो? रचित ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हर वक्त बहुत अच्छे मूड में रहता हूँ, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आते हो या तुम्हारा कॉल आता है तो स्पेशली मेरा मूड खराब हो जाता है। जो कहना है जल्दी बोलो और कॉल कट करो, अभिमान ने जवाब दिया। इससे पहले कि वो फिर से शुरू हो जाता, रचित जल्दी से बोला, हाँ ठीक है, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि ऐश मुंबई आ गया है और कल वो ऑफिस आ रहा है। तैयार रहना, तुम जो करवाने वाले हो उसके बाद वो मना भी कर सकता है।
ठीक है, मैं देख लूंगा, अभिमन्यु बोला और उसने कॉल कट कर दिया था। रचित को कुछ आगे कहने का मौका तक नहीं मिला था। अभिमान रचित से बात करके हटा ही था कि तभी उसने देखा राजवंश मेंशन का मेन गेट खुला और एक लग्जूरियस गाड़ी अंदर आ रही थी। अभिमान से छुपा हुआ नहीं था कि वो गाड़ी किसकी हो सकती है। अरे नहीं, मुझे लगा चाचू ऐसे ही बोल रहे हैं, वो तो सच में यहाँ आ गए। मेरी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करने वाले लोग कम थे क्या जो मैं सबसे बड़ा सपोर्टर भी मेरे खिलाफ जाने का सोच रहा है, अभिमान ने चिढ़कर कहा और वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। वहीं इस वक्त कुलदीप और सिद्धांत गार्डन एरिया में वर्क कर रहे थे। सिद्धांत उन्हें ऑफिस से जुड़ी कुछ बातें बता रहा था जबकि अभिमन्यु के साथ ही वेदांत की गाड़ी वहां पर अंदर आई थी। उस वक्त रात के कोई 12 बज रहे होंगे। एक तरफ जहां गाड़ी से अभिमन्यु और ऋषिका बाहर निकले तो वहीं उन्हीं के साथ वेदांत भी। अभिमन्यु को वहां अचानक देखकर वेदांत के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। लगता है अब एंटरटेनमेंट ज्यादा होने वाला है, जो राजवंश फैमिली के ड्रामे में भाग लेने के लिए दूसरी राजवंश फैमिली के लोग भी आने लगे हैं, वो भी अभिमन्यु राजवंश। वेदांत के चेहरे पर प्लेफुल लुक था। पहले तो वो सीधा अंदर जाने वाला था लेकिन अब वो अभिमन्यु के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम चाचू। अभिमन्यु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वहीं इशिका वेदांत को अजीब नजरों से देख रही थी। उसका लुक देखकर ही पता चलता था कि वो काम करने से ज्यादा अपना टाइम क्लब में बिताता होगा। उसने अभी भी लूज पैंट पहना हुआ था, उसके व्हाइट शर्ट की आधी बटन खुली थी, बाल भी ठीक से ट्रिम नहीं किए हुए थे और माथे पर बिखरे हुए थे। ऊपर से गले में उसने रॉकस्टार पेंडेंट पहना हुआ था। राजवंश फैमिली में कोई रॉकस्टार भी है, मुझे पता नहीं था, अचानक इशिका के मुंह से निकला। अब तक वो राजवंश फैमिली के जितने भी आदमियों से मिली थी उन सबका बर्ताव काफी स्ट्रिक्ट था और सभी फॉर्मल लुक में रहते थे। इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू सो मच, पर मैं कोई रॉकस्टार नहीं हूँ। वेदांत ने खुश होकर अपने बालों में हाथ घुमाए। वो इशिका को आंटी कहने वाला था लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इशिका पर गई वो बोलते हुए रुक गया था। वेदांत ने एक नज़र इशिका की तरफ गौर से देखा,
उसने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। वैसे उम्र में मैं और अभिमन्यु एक जितने ही हैं। चाचू फॉर्मैलिटी के लिए कहना पड़ता है, तुम तो मुझसे छोटी ही होगी तो आंटी कहना अजीब लगेगा। मेरा नाम वेदांत राजवंश है, तुम डॉक्टर मर्चेंट होना। इशिका के साथ इस तरह इनफॉर्मली बात करने पर अभिमन्यु वेदांत को घूर कर देखने लगा। अपने इशिका के आगे आते हुए कहा, लगता है इस खानदान के लड़कों मेरी वाइफ को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन है। उम्र चाहे जो भी रही हो लेकिन रिश्ता अलग है, तो बेहतर होगा कि उसी नज़र से देखो। उसके देखने भर के लहजे से अभिमान समझ गया था। जब वेदांत इशिका और अभिमन्यु से बात कर रहा था, इस बीच कुलदीप और सिद्धांत भी उसके पास पहुंच गए थे। तुम तो दो दिन बाद आने वाले थे ना, सिद्धांत ने अभिमन्यु को घूरते हुए पूछा। लगता है हर एक को अलग से तमीज़ सीखनी होगी। इस फैमिली में हमेशा उम्र से ज्यादा रिश्तों को मैं इम्पोर्टेंस देते हैं। चाहे बड़ी उम्र वाले लोग कितने भी गलत या घटिया क्यों ना हो, उनकी इज्जत करनी ही पड़ती है। उम्मीद है कि मुझे बार बार इस बात को समझाना ना पड़े, अभिमान ने सख्त अंदाज में कहा। वो उम्र में भले ही वेदांत के बराबर हो या सिद्धांत से छोटा हो, लेकिन हर हिसाब में अभिमन्यु उनसे बड़ा था। सिद्धांत इससे पहले कुछ कहकर अभिमन्यु को नाराज करता, कुलदीप ने बीच में पड़ते हुए कहा, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक कह रहा है सिद्धांत, ये रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगता है तो तुम्हें उसके साथ इस तरह पेश आना चाहिए। दूसरी बात, ये अभिमन्यु का घर है, वो जब चाहे तब यहाँ आ सकता है। सिद्धांत को झिड़कने के बाद कुलदीप अभिमन्यु की तरफ देखकर चापलूस मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने तुम्हारे लिए रूम तैयार करवा दिया है। तुम्हारी प्राइवेसी में किसी तरह का दखल ना हो, इसीलिए मैंने ऊपर के फ्लोर का गेस्ट रूम तैयार करवाया है। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और फिर इशिका का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। अभिमन्यु पहले भी वहां आया था, तब वो ऊपर के गेस्ट रूम में ही ठहरा था। उसे किसी की जरूरत नहीं थी जो उसे उसके कमरे का रास्ता बताएं। उनकी बातें सुनकर वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, ये सच में प्रशांत राजवंश का ही बेटा है ना, मुझे तो इस खानदान का भी नहीं लगता, इसका एटीट्यूड अलग ही है। वेदांत भी अभिमन्यु की तारीफ कर रहा था, ऊपर से कुलदीप ने सिद्धांत को डांट दिया तो वो गुस्से में बोला, आप भी उसका फेवर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी भलाई इसी में है कि वो हमारे पक्ष में रहे। वो राजवंश एम्पायर की मेन फ्रेंचाइजी का सीईओ है। अगर हमारे दादू को इतना बड़ा बिजनेस और ये सब एम्पायर मिला तो वसुधा दादी की वजह से। बेहतर होगा कि तुम भी इसकी इज्जत करना और इसे अपने पक्ष में रखना सीख लो, जैसे अभिमान ने किया है। कुलदीप ने जवाब दिया और वहां से अभिमन्यु के पीछे जाने लगा। उसका बिहेवियर यही था, जो उसका फायदा करे वो उसी के पक्ष में हो जाता था। वहीं सिद्धांत अभिमन्यु को गुस्से भरी निगाहों से तो इशिका को अजीब नजरों से जाते हुए देख रहा था। उसकी नजरों को फॉलो करते हुए वेदांत बोला, थोड़ी देर पहले तो चाचू ने कहा था कि वो उनकी पत्नी है, तो रिश्ते में हमारी आंटी लगती है। इस तरह हवस भरी निगाहें उन पर तो मत डालो, इसी वजह से तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। सिद्धांत ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा और फिर वहां से चला गया था। वहीं अभिमान अभिमन्यु से बात करने के लिए उसके सामने पहुंचा था। अभिमन्यु उसकी बेचैनी समझ सकता था, लेकिन रात काफी हो गई थी। उसने अभिमान की आंखों में देखते हुए कहा, मैं काफी थक गया हूँ, कल बात करते हैं अभिमान। अभिमान ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से अपने कमरे में चला गया था। अभिमान अभी भी कंफ्यूज था कि अगर अभिमन्यु वहां आया है तो वो किसका फेवर करेगा। ऊपर से अगली सुबह भी उसे अभिमन्यु से मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि रचित का मैसेज आया था। ऐश अर्ली मॉर्निंग के लिए एआर राजवंश पहुंच चुकी थी और उसे पहले ऐश से मिलना था। चलिए, मीटिंग एक और पार्ट एक्सटेंड हो गई है। वैसे एक बात अभिमन्यु ने सही कही, राजवंश फैमिली के आदमियों को इशिका से ऑब्सेशन है। पहले नक्श, फिर पार्क और अब वेदांत और सिद्धांत। चलिए, आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।